ता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं आकाशवाणी गोल्ड के कार्यक्रम आज सवेरे के साथ। प्रोग्राम के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं अनीता। नमस्कार अनीता।
नमस्कार सरफिरोजी। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर एवर एक्साइटिंग डेली न्यूज मैगजीन आज सवेरे, वेरिन ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर वी शैल ब्रिंग यू द लेटेस्ट इन नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज द 22nd ऑफ सितंबर एंड टुडे सर फिरोजी इज द नेशनल डॉटर्स डे।
जी किसी ने खूब ही कहा है कि जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। और अनीता ये बात बिल्कुल सच है कि वाकई बेटियां घर की रौनक होती हैं।
जी बिल्कुल,
बेटियों को वैभव और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। इनमें एक अलग सी क्रिएटिविटी होती है, रचनात्मकता होती है, मीठा बोलना इन्हें पसंद होता है और ये किसी का दिल नहीं दुखा सकती। आज सभी बेटियों को समर्पित राष्ट्रीय बेटी दिवस यानी नेशनल डॉटर्स डे मनाया जा रहा है और आज का दिन एक मौका है जब हम बेटियों से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा कर सकते हैं, चाहे वो उनकी सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर उनकी शिक्षा का विषय हो। अनीता,
यस, वी कैन टॉक अबाउट डॉटर्स एम्पावरमेंट एंड इट शुड स्टार्ट एट एन अर्ली एज बिकॉज वी टेंड टू सरफिरोजी डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स एंड वी टेंड टू सी गर्ल्स एज मोर डिपेंडेंट एंड यू नो I'll not call weak, but yeah, somewhat vulnerable. And that kind of carries on into the adulthood also. और so we can start young with
जी,
kids.
ये भेदभाव बहुत छोटी उम्र से ही शुरू हो जाता है
जी,
दोनों के
and
बीच.
It keeps playing throughout their lives. So yes, we should empower our girls and we should tell them that yes, not just equal, they are their own unique individuals and keep going. And we start with our news headlines first, Sir Firozi.
जी अनीता
जी,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्वाड देश हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी और समृद्ध बनाए रखने के प्रति संकल्पित है। अमेरिका के डेलवेयर में क्वाड शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ये आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया तनाव और संघर्ष से जूझ रही है और ये जरूरी है कि क्वाड देश साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए मानवता के लिए एकजुट होकर कार्य करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्वाड देशों ने साझा रूप से स्वास्थ्य, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में पहल की है।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट हिज जापानीज काउंटरपार्ट फ्यूमियो किशिदा ऑन द साइडलाइंस ऑफ द क्वाड समिट एंड एक्सचेंज व्यूज टू डीपन बायलैटरल कोऑपरेशन फर्दर। मिस्टर मोदी एंड मिस्टर किशिदा रिव्यूड द इंडिया जापान रिलेशनशिप एंड टॉक्ड अबाउट वेज टू एक्सपैंड द बायलैटरल रिलेशंस। Mr. Modi also held talks with Australian Prime Minister Anthony Albanese. The two leaders reaffirmed their commitment to further deepen the comprehensive strategic partnership for mutual benefit as well as for peace, stability and prosperity of the Indo-Pacific region. Australian PM Albanese said it was great to talk with PM Modi and discuss ways to strengthen India-Australia partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that India will contribute 40 million vaccine doses for Indo-Pacific countries under Gavi, the Vaccine Alliance and Quad initiatives. Mr. Modi was speaking at the Cancer Moonshot event on the sidelines of the Quad Summit. The initiative aims at implementation of innovative strategies to prevent, detect and treat cancer. PM Modi thanked President Biden for organizing this event and stated that it reflects the shared determination of the Quad countries to provide affordable, accessible and quality health care. PM Modi said that India is willing to share its experience and expertise. PM reiterated India's vision of One Earth, One Health and announced the support of sampling kits detection kits and vaccine worth $7.5 million. PM Modi also said that India will cooperate in radiotherapy treatment and capacity building. PM also lauded Quad for its human-centric approach.
और अनिता, हम जानते हैं कि देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी तरह का माहौल झारखंड में भी बना हुआ है. झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का एक दल कल दो दिन के दौरे पर रांची जाएगा. आयोग रांची में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी और केंद्रीय बल समन्वयक से भी मुलाकात करेगा. आयोग राज्य के सभी जिलों के चुनाव अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ भी समीक्षा बैठक करेगा.
कैंपेनिंग हैज इंटेंसिफाइड फॉर द सेकेंड फेज ऑफ असेंबली इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर. इन दिस फेज 26 कंस्टिट्यूएंसीज स्प्रेड ओवर 6 डिस्ट्रिक्ट्स विल गो टू द पोल्स ऑन 25th ऑफ दिस मंथ. Senior BJP leader and Union Home Minister Amit Shah said that Jammu and Kashmir has witnessed an unprecedented transformation under Prime Minister Narendra Modi's leadership, moving from terrorism to peace. Addressing a public rally at Mendar in Poonch district, he said the youth of JNK now hold laptops in their hands instead of stones. Mr. Shah also addressed rallies in Rajouri and Jammu districts. Congress Chief Mallikarjun Kharge, who's in Jammu to campaign for Congress candidates in the ongoing assembly election, said his party would launch an agitation against threats to Rahul Gandhi. Kharge questioned Prime Minister Narendra Modi's failure to take action against leaders of his party who used derogatory remarks against the Lok Sabha's leader of opposition.
पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि विश्व कल्याण के लिए एक डैशबोर्ड स्थापित करने की भारत की पहल को ब्राजील में G20 देशों की मंत्री स्तरीय बैठक में पुरजोर समर्थन मिला है. उन्होंने कहा कि देश हरित पर्यटन को आगे बढ़ाने और सहयोग की सामूहिक शक्ति की भावना से आगे बढ़ने के प्रति प्रतिबद्ध है. श्री शेखावत ने कहा कि सामाजिक आर्थिक विकास और प्रकृति अनुकूल पर्यटन में संस्कृति और पर्यटन की भूमिका महत्वपूर्ण है.
Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that India is on the way to become the third largest economy by 2027, with the country's growth rate projected at around 7%. While addressing the 12th East Asia Summit Economic Ministers meeting in Laos yesterday, Mr. Goyal reiterated the country's commitment to strengthen the East Asia Summit Forum and acknowledged its role in promoting peace, stability and economic prosperity. Mr. Goyal also spoke about the country's commitment to an open, transparent and inclusive World Trade Organization reform process, emphasizing a rules-based system with principles of non-discrimination, inclusivity and differential treatment. The minister also interacted with the Indian diaspora and community members, acknowledging their invaluable contributions to enhancing bilateral relations between the two countries.
श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना जारी है. डाक मतपत्र की गिनती में अनुरा कुमार दिशा नायक के अन्य उम्मीदवारों पर बढ़त बनाए हुए हैं. राष्ट्रपति चुनाव में लगभग 75% मतदान हुआ था. छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान काफी हद तक शांतिपूर्ण था. निर्वाचन आयोग आज अंतिम परिणाम घोषित कर सकता है.
In the chess Olympiad, India defeated the top seed US in the penultimate round in Budapest, Hungary yesterday. In the open section, Gukesh triumphed over world's number 2 Fabiano Caruana, while Arjun outplayed Lenier Dominguez Perez, both with white pieces. However, Pragnananda suffered a loss to Wesley So, while Vidit Gujarati managed to hold Slavon Aronian to a draw. With this performance, India tops the leaderboard with 19 match points after 10 rounds. In the women's section, India defeated China with Divya Deshmukh besting Ni Shichun, while all three remaining games ended in draws, giving India a victory margin of 2.5 to 1.5. In the women's section, India is tied for the lead with Kazakhstan, each with 17 points. The final round will begin at 2:30 p.m. IST today.
चेन्नई में बांग्लादेश से पहला क्रिकेट टेस्ट मैच जीतने के लिए भारत को 6 विकेट की जरूरत है। खेल के तीसरे दिन कल मेजबान भारत ने बांग्लादेश के सामने 515 रन का विशाल लक्ष्य रखा। जवाब में मेहमान टीम ने 37 ओवर और 2 गेंद में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए थे। खराब रोशनी के कारण कल का खेल जल्दी खत्म हो गया। स्टम्प्स के समय कप्तान नजमुल हुसैन शांतो 51 और शाकिब अल हसन 5 रन बनाकर नाबाद थे। भारत के लिए रविचंद्रन अश्विन ने 3 और जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट लिया। अब आपको देंगे महानगरों का हाल। शुरुआत कर रहे हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से, जिनके बारे में जानकारी देंगी अनीता।
As part of the nationwide coastal cleanup initiative, the National Coast Guard conducted beach cleaning drives at Marina and Elliott beaches in Chennai. The chief of the eastern region of the Coast Guard said that preserving the marine ecosystem is imperative for the overall well-being of all the living beings in sea. He stressed upon the importance of awareness on preventing plastics from reaching the sea, as the marine ecosystem plays a vital role in the human food cycle. In another event, the National Centre for Coastal Research conducted a beach cleanup event at Thiruvannamiyur Beach, Chennai. Over 120 volunteers, including scientists of NCCR, representatives from the East Coast Beach Walkers Association, and students of various colleges participated in the event. Dr. M. Ravichandran, Secretary, Ministry of Earth Sciences, May Ellen Stena, Ambassador of Royal Norwegian Embassy, took part in the initiative. The Swachh Sagar Surakshit Sagar initiative contributes to the physical cleaning of the beaches. The Rajya Sabha Member of the Parliament from BJP, Irana Kadadi, has invited young farmers and entrepreneurs to take advantage of a huge demand for silk garments and its byproducts around the globe. He was speaking at the SERI stakeholders meet organized by the Central Silk Board in Bengaluru yesterday. Irana Kadadi informed that India ranks second in the world in silk cultivation, and in the recent years, Indian silk garments and other silk-based products have gained recognition in different countries. He called upon the stakeholders in the silk sector to adopt modern technology in silk farming and production to surpass China in silk production. Bengaluru Electricity Supply Company Limited, a Bruhat Bengaluru Mahanagar Palike, have partnered to clean overgrown vegetation such as tree branches, creepers, bushes and shrubs that have flourished due to the recent monsoon rains in Bengaluru. A significant vegetation has grown around electrical poles, street lights, distribution lines, transformer centers, LT feeder pillars, boxes and RMUs after the recent rains in the state capital. Heavy rains accompanied by strong winds and thunder lashed several parts of Hyderabad and surrounding districts last night. Bongir in Yadadri Bongir district recorded the highest 103 mm rainfall, while Golconda in Hyderabad recorded 90 mm of rainfall in a span of 2 hours. The downpour led to waterlogging in many areas of the city. Abids, Bansilalpet, Uppal, Begum Bazar, Nacharam, Bachupoli, Miapur are among the areas that recorded heavy rainfall. The Met officials have issued a yellow alert till Monday, warning of isolated heavy rains in several districts of the state. And now for मेट्रो सिटी अपडेट्स फ्रॉम दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता, ओवर टू सर फिरोजी।
जी अनीता, हम शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली की खबरों से। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद दिल्ली कैबिनेट में मंत्री आतिशी ने सरकार बनाने का दावा किया था और उन्होंने कल अपने पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने मंत्रिमंडल को विभागों का आवंटन कर दिया है। नई कैबिनेट में फिलहाल सीएम के साथ 5 सदस्य हैं। मुख्यमंत्री आतिशी शिक्षा, बिजली और वित्त समेत 13 विभागों का नेतृत्व करेंगी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य, शहरी विकास और समाज कल्याण सहित 8 विभागों का प्रभार संभालेंगे। गोपाल राय के पास सामान्य प्रशासन, पर्यावरण, वन और वन्यजीव समेत 3 विभाग रहेंगे। मंत्री कैलाश गहलोत को परिवहन, प्रशासन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, गृह और महिला एवं बाल विकास विभाग आवंटित किए गए हैं। मुकेश अहलावत को श्रम एवं रोजगार सहित 5 विभाग आवंटित किए गए हैं और इमरान हुसैन खाद्य एवं आपूर्ति और चुनाव विभाग संभालेंगे। मुख्यमंत्री ने शपथ लेने वाले मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे से संबंधित प्रस्ताव मंजूरी के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को भेज दिया है। दिल्ली भाजपा ने प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार की शुरुआत की है। पार्टी के अनुसार हर शनिवार दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और दिल्ली भाजपा के सांसद लोगों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जनसेवा और जनता की समस्या का समाधान करना ही पार्टी की पहली प्राथमिकता है। और अब चल रहे हैं मुंबई की ओर। अनिता, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी देश में स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है और लोगों से अपने आसपास सफाई करने और पेड़ लगाने का आग्रह किया जा रहा है। इसी क्रम में कल विश्व तटीय सफाई दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के पालघर जिले में वसई विरार शहर नगर निगम ने 51 टन कचरा एकत्र करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस महत्वपूर्ण पहल में स्कूल और कॉलेज के छात्रों, सामाजिक संगठनों के सदस्यों, अग्निशामकों, स्वयंसेवकों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, पर्यावरणविदों और नागरिकों सहित 13,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। केंद्र सरकार ने मेट्रो 3 लाइन में मुंबई के कुछ मेट्रो स्टेशनों के नाम बदलने का फैसला किया है। जिन प्रमुख स्टेशनों के नाम बदले गए हैं उनमें छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा T1 है, जिसका पहला नाम डोमेस्टिक एयरपोर्ट हुआ करता था। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा T2, जिसे पहले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, और जगन्नाथ शंकर शेत मेट्रो, जिसे पहले मुंबई सेंट्रल मेट्रो के नाम से जाना जाता था। एक खबर कोलकाता से है। विमेन फोरम फॉर स्क्रीन वर्कर्स ने कार्यस्थल पर उत्पीड़न और लिंग आधारित हिंसा की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति बनाने के लिए कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। फिल्म, टेलीविजन और वेब प्लेटफॉर्म सहित स्क्रीन मनोरंजन उद्योग के अभिनेताओं, टेक्नीशियनों और क्रू सदस्यों का एक समूह है। ये पत्र कोलकाता में आरजी कर दुष्कर्म और हत्या मामले के मद्देनजर लिखा गया है। और अब आपको देंगे महानगरों के मौसम की जानकारी। शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं मुंबई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अनिता, आपके पास मौसम से जुड़ी क्या जानकारी है?
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव थंडरस्टॉर्म विद रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 26 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 34 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। The minimum temperature was 21 degrees and the maximum will be around 31 degrees Celsius. Hyderabad is expected to have a generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 30 degrees Celsius.
और श्रोताओं, अब वक्त है इतिहास के पन्नों में झांकने का और आपको बताने का कि आज का दिन क्यों खास है।
So we begin with the year 1599. 24 merchants gathered in London's Founder Hall under the auspices of Lord Mayor to start a new company named East India Company with a share capital in India. And in the year 1789, Office of Postmaster General is created under the Treasury Department.
और आज ही के दिन 1903 में अमेरिकी नागरिक इटालो मार्चियोनी को आइसक्रीम कोन के लिए पेटेंट मिला। और 1914 में आज ही के दिन मद्रास बंदरगाह पर जर्मनी के युद्धपोत इम्देन ने बमबारी की।
इन द ईयर 1931 महात्मा गांधी मीट्स चार्ली चैपलिन इन लंदन।
और आज ही के दिन 1949 में सोवियत संघ ने परमाणु बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 1955 में आज ही के दिन ब्रिटेन में टेलीविजन का व्यवसायीकरण शुरू हुआ। 1965 में आज यानी 22 सितंबर के दिन ही भारत पाकिस्तान के बीच संयुक्त राष्ट्र की पहल पर युद्ध विराम हुआ। 1966 में आज ही अमेरिकी यान सर्वेयर 2 चंद्रमा की सतह से टकराया।
एंड इन द ईयर 1979 इजराइल कंडक्ट्स न्यूक्लियर टेस्ट इन इंडियन ओशन। एंड इन 1980 इन ईरान इराक वॉर बिगिंस। इन द ईयर 1992 इंडो ब्रिटिश एक्सट्रेडिशन ट्रीटी is signed in London. And in the year 1999, former Test all-rounder Chandubordhe was reappointed chairman of National Selection Committee on day two of the BCCI AGM in Jaipur.
और 2018 में आज ही के दिन ईरान में वार्षिक सैन्य परेड पर आतंकवादियों ने हमला किया. इसमें महिलाओं और बच्चे समेत कम से कम 29 लोग मारे गए. इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली. श्रोताओं, अब वक्त है आपको उन हस्तियों के बारे में जानकारी देने का जिनकी आज ही पुण्यतिथि है या जन्मदिवस है. अनीता, कहाँ से शुरू कर रहे हैं हम?
Today we remember Guru Nanak Dev Ji, the founder of Sikhism, the first of the 10 Sikh Gurus. Today he transcended. His birth is celebrated as Guru Nanak Guru Purab on Katak Puranmashi, that is full moon of Katak. And Nanak is said to have traveled far and wide across Asia, teaching people the message of Ik Omkar, which is one God, who dwells in every one of his creations and constitutes the eternal truth. With this concept, he would set up a unique spiritual, social and political platform based on equality, fraternal love, goodness and virtue. Nanak's words were registered in the form of 974 poetic hymns or shabd in the holy religious scripture of Sikhism, the Guru Granth Sahib, with some of the major prayers being Japji Sahib, that is, Jap is for reciting, and Ji and Sahib are suffixes signifying respect. It is part of Sikh religious belief that the spirit of Nanak's sanctity, divinity and religious authority has descended upon each one of the nine subsequent gurus when the guruship was devolved onto them.
आज दुर्गा खोटे जी की पुण्यतिथि है. ये अपने जमाने में हिंदी और मराठी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री हुआ करती थी. इन्होंने कई फिल्मों में शानदार अभिनय किया. आरंभिक फिल्मों में नायिका की भूमिका करने के बाद जब वो चरित्र अभिनेत्री की भूमिकाओं में दर्शकों के सामने आई तो वहां भी उनके बेमिसाल अभिनय को सबने सराहा. दुर्गा खोटे ने करीब 200 फिल्मों के साथ ही सैकड़ों नाटकों में भी अभिनय किया. इनकी मुख्य फिल्मों में मुगले आजम, भरत मिलाप, विदाई आदि शामिल हैं. आपको सुनाने जा रहे हैं उनकी फिल्म मुगले आजम का ये डायलॉग.
सलीम, महाबली का सामना एक लौंडी के लिए
नहीं, उसके लिए जो मेरे अहद में मकरूर मुगलों की आबरू और हिंदुस्तान की मलिका बनेगी.
हर किस नहीं, खुददार मुगलों की आबरू इतनी हल्की नहीं कि एक नाचीज लौंडी के बराबर तुर जाए. और हमारा हिंदुस्तान कोई तुम्हारा दिल नहीं कि लौंडी जिसकी मलका बने.
तो मेरा दिल भी कोई आपका हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत करें.
तुम्हारे दिल पे हमारा कोई अख्तियार नहीं, लेकिन खुद तुम पर हमारा अधिकार जरूर है. आखिर तुम हमारी औलाद हो.
हाँ मैं.
And, the year 2000, in a millennium issue, India Today named her among 100 people who shaped India, noting that Durga Khote marks the pioneering phase for women in the Indian cinema. She has received the highest award in Indian cinema, the Dada Saheb Phalke Award, in the year 1983 for lifetime contribution to Indian cinema. Today is also the death anniversary of Nawab Muhammad Mansoor Ali Khan Patodi, the Indian cricketer and a former captain of the Indian cricket team. Patodi was appointed India's cricket captain at the young age of 21 and described as one of its greatest. Patodi was also called the best fielder in the world of his time by commentator John Arlott and former England captain and contemporary Ted Dexter. And today is the birth anniversary of the social activist and educator in Maharashtra, Bhaurao Patil. Born on this day in 1887, a strong advocate of mass education, he founded the Rayat Education Society. Bhaurao played an important role in educating backward castes and low-income people by coining the philosophy Earn and Learn. He was a prominent member of Satya Shodhak Samaj, founded by Mahatma Jyotirao Phule. The people of Maharashtra honored him with a sobriquet of Karamveer, King of Actions, as the government of India awarded him with Padma Bhushan in the year 1959. And today is also the birthday of Princess. We are talking about Toni Basil, who started her dancing career professionally in childhood, but her career started when she served as an assistant choreographer to David Winters and as a dancer on Shindig, a breakthrough music variety show that premiered on the ABC network in 1964. She was a lead dancer in 1964 Beach Party film Pajama Party and a dancer in the Elvis Presley movie Viva Las Vegas.
आज पुण्यतिथि है आशालता वाबगांवकर की. ये मराठी और हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थी. इन्होंने कई फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से बड़े पर्दे पर अमिट छाप छोड़ी. दूरदर्शन पर उन्होंने अपने कई धारावाहिकों से घर घर में पहचान बनाई. इन्हें मूल रूप से आशालता के नाम से जाना जाता था. इन्होंने सबसे पहले कोंकणी और मराठी नाटकों में अभिनय करना शुरू किया. इनकी मुख्य फिल्मों में अंकुश, अपने पराए, आहिस्ता आहिस्ता, शौकीन, वो सात दिन, नमक हलाल, यादों की कसम आदि शामिल है. अभिनय के अलावा आशालता ने कई गीत भी गाए थे और हम आपको उन्हीं का गाया एक गीत सुनाने जा रहे हैं.
Today is the birthday of Ranjita Robicord, the Indian actress. She was trained at FTII. She has appeared in around 47 films and she has portrayed a variety of characters, and her films include Laila Majnu, released in 1976, Akhiyon Ke Jharokon Se, which came out in 1978, Pati Patni Aur Wo, the same year, and she was nominated for the Filmfare Awards three times, including two of the above films. And talking about her early life, she started her film career as a lead opposite Rishi Kapoor in the film Laila Majnu. Let's listen to a snippet of a song from that film first.
उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके, उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके, हर जलवा था एक शोला उसने यार के सदके, हर जलवा था एक शोला उसने यार के सदके,
इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके.
Subsequently, she acted in commercially successful films like Pati Patni Aur Wo with Sanjeev Kumar, Akhiyon Ke Jharokon Se with Sachin. She made a fabulous team with Mithun Chakravarti in films such as Suraksha, Tarana, Humse Badhkar Kaun, Aadat Se Majboor, Bazi, Ghar Ek Mandir, which came out in 1984, and Gunahon Ka Devta. She played Amitabh Bachchan's heroine in Satya Pe Satta also, and her sister Rubina appeared in Ek Main Aur Ek Tu opposite Rajiv Tandon, Ravina Tandon's brother. Kaur was associated with Rajashree films. Having been in many of their successful films, she starred opposite Rishi Kapoor, Sachin, Raj Babbar, Raj Kiran, Deepak Parashar, Vinod Mehra and Amol Palakkar in several films. Her last film before her exit from the film industry was Gunahon Ka Devta, released in 1990. She appeared in few television serials also in 90s and then took a hiatus. After 15 years, she returned to films in Anjane, The Unknown, and 2008 she starred in Zindagi Tere Naam, which reunited her with मिथुन चक्रवर्ती एंड टाइम नाउ टू वाइंड अप आवर प्रोग्राम।
जी बिल्कुल अनीता, दोस्तों समय आ गया है आपसे विदा लेने का। सर फिरोजी और अनीता को दीजिए इजाजत कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, पर आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, अवर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ ग्रेट डे।
नमस्कार।